से बोलेगी ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाप दादा की अति लाडली, दिल तक तनसीन विशेष शिव शक्तियां, जिन्हों को बाबा ने नई दुनिया के लिए निमित्त बनाया है, जिन्हों को वंदे मातरम कहकर बुलाया है। और ऐसे भी ये जून मास मम्मा का मास है, मम्मा की कई बातें आज तक सुनी भी है, अंदर ही अंदर चिंतन भी करते होंगे, सुमिरन करते होंगे, क्योंकि मम्मा नंबर वन गई। कैसे गई वो सब सुना है, लेकिन ऐसी मम्मा की यादगार जो माँ से, उसमें आप सब यहां भट्टी करने के लिए पहुंचे हैं, अति हर्ष की बात है। आप सबको भी बहुत खुशी होती होगी कि मम्मा के लिए जब बाबा ने भी कहा था, मम्मा ने जब शरीर छोड़ा, हम समझ सकते हैं कि जिन्होंने इतनी पालना दी, मम्मा की पालना लेकर के बहुत आगे बढ़े, छोटी से छोटी बात भी मम्मा सिखाती थी, सालों तक जिनके साथ रहे। जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो स्वाभाविक है थोड़ा कुछ कईयों को अंदर से दुख की महसूसता भी होती थी, तब बाबा ने एकदम सबके माइंड को चेंज कर दिया एक ही बात सुनाकर। वो कौन सी बात सुनाई थी कि देखो मम्मा मेरे से भी पहले संपूर्ण बन गई। इस बात को सुन करके क्या होगा, खुशी होगी, दुख गायब हो गया, सबके अंदर संकल्पों का परिवर्तन हो गया। तो ऐसी हमारी मम्मा, जिनको बाबा ने भी निमित्त बनाया था और बहुत गहन तपस्या की थी, बड़ी आज्ञाकारी वफादार मम्मा ने इस यज्ञ में पार्ट बजाया और अपनी मंजिल पर पहुंच गई। आप सब बच्ची के लिए खास बाबा के इस स्थान पर अपने ही घर में पहुंचे हैं। आज पहली बार शुरुआत में मिलते इसलिए ऐसे ही कहेंगे कि सबका बहुत ही दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। कौन सा स्थान है ये बात हम अपने अपने स्थानों पर भी कर सकते हैं, सुन सकते हैं, योग भी लगा सकते, लेकिन हम कहां पहुंचे हैं, कौन सी भूमि पर पहुंचे हैं, ऐसे ही कहेंगे कि ये है वरदानी भूमि। बाबा के वरदानों से संपन्न है, अनगिनत वरदान बाबा ने स्वयं महावाक्य इस भूमि पर उच्चारण किए हैं। इसलिए इस भूमि में भगवान के वाइब्रेशंस बहुत ही अच्छी तरह फैले हुए हैं। कितने सालों से बाबा यहां शांतिवन में भी आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। ऊपर तो पढ़ाया ही, वो तो है ही विशेष भूमि, लेकिन इस भूमि पर भी 20 साल करीब हो गए। यहां भी बाबा ने अनेक वरदान दिए हैं, जिस कारण आप सब अनुभव करते होंगे कि इस भूमि पर आते ही हमारा योग सहज लग जाता है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कोई भी बात को धारण करने में भी मेहनत नहीं लगेगी, चाहे उठना है, चाहे योग लगाना है, किसी गुण को धारण करना है, व्यर्थ से मुक्त होना है, कोई मेहनत नहीं। अनुभव करते हैं इन सभी, इसलिए ये वरदान भूमि है। बिना मेहनत हम अपनी दिव्य जीवन की अनुभूति यहां कर सकते हैं। दूसरा ये है परिवर्तन भूमि। यहां आकर हम अपनी कोई भी कमी कमजोरी का परिवर्तन करना चाहते, संकल्प दृढ़ करेंगे, जरूर वो परिवर्तन भी संभव होता है। तो ये है भगवान की अवतरण भूमि। फिर ये है तपस्या भूमि। हमारी वरिष्ठ दादियों ने, दीदियों ने, दादाओं ने, कई प्रकार की विशेष आत्माओं ने भी यहां सालों तक मेहनत तपस्या की है। हम भी यहां तपस्या करने के लिए आए हैं। ये है शीश महल। हर एक अपनी कमी कमजोरी को भली भांति देख सकते, वो दिखाई देगा, कोई कहेगा नहीं कि आप में कमी है, खुद को ये महसूस होगी। ये लाइट हाउस माइट हाउस है, इसी स्थान से सारे विश्व तक लाइट और माइट फैलती रहती। ऐसे स्थान पर हम यहां बैठे हैं, एक मैग्नेटिक स्थान है, मैग्नेटिक भूमि है, दूर दूर से आत्माओं को आकर्षित करने वाली ये भूमि है। यहां भी जो बैठे हैं, कितने दूर दूर से सब आए हैं, कितनी लंबी यात्रा करके यहां आए हैं। ये भूमि का खींचाव है, भूमि आकर्षित करती है। तो भूमि का बड़ा महत्व है। शायद भक्ति में आपने उदाहरण सुना होगा श्रवण का। श्रवण अपने लौकिक माता और पिता को कावड़ में बिठाकर यात्रा कराता था, बड़ी भावना से वो यात्रा कराता था। लेकिन एक स्थान पर जब वो पहुंचा, वहां उसको ये संकल्प आया कि मैं ये जो मेहनत कर रहा हूं उसका फल मुझे मिलना चाहिए। थोड़ा आगे गया तो उसको फिर संकल्प आया कि ये मैंने क्या सोचा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा संकल्प मुझे नहीं आना चाहिए। तो वो भूमि से वो हटा, दूर गया, तो उसका सोच बदल गया। वो वापस गया और वहां से थोड़ी मिट्टी उठाकर ले आया। फिर जहां उसका संकल्प चेंज हुआ वहां उसने रखा उस मिट्टी को। फिर उस मिट्टी पर वो खड़ा हुआ, फिर से उसको वही संकल्प आया। तो फिर क्या सिद्ध हुआ, कि हर भूमि का अपना अपना महत्व होता है, क्योंकि भूमि के कण कण में वहां रहने वालों के वाइब्रेशंस समाये हुए होते हैं। इसलिए महत्व बताया कि ये किस भूमि पर हम बैठे हैं, परिवर्तन भूमि पर बैठे हैं। हमारे भी कोई नेगेटिव कमजोर संकल्प होंगे, वो भी यहां आकर अपने आप चेंज होते हैं। तो भट्टी करने आए हैं, सबको पता है भट्टी माना ही, क्या कहेंगे, भट्टी माना ही तपना, परिवर्तन होना। कोई भी चीज भट्टी अग्नि में डालते हैं तो उसका रंग रूप गुण बदल जाता है। कहते हैं ईंट को भट्टी में पकाते हैं, उसका रंग रूप बदल जाता, गुण परिपक्व हो जाती, फिर मकान के निर्माण में हम उसको यूज कर सकते। अगर कच्ची ईंटें कोई ट्रक में आ गई तो क्या करेंगे, वापस भेजेंगे कि ये तो काम में नहीं आएगी, हमारा मकान कमजोर रहेगा, हमको पक्की चाहिए। बाबा भी समय प्रति समय या हर वर्ष अलग अलग ग्रुपों की भट्टी क्यों रखते हैं, बाबा को भी कैसी ईंटें चाहिए, पक्की चाहिए। पक्की ईंटें नई दुनिया के निर्माण में यूज होगी, तो हम नई दुनिया के इमारत की एक एक ईंट है। अच्छी तरह वो पकी हुई होनी चाहिए। कहते हैं ना, हम छोटा सा वो मटका भी लेने के लिए जाते तो टकोरे लगाते, आवाज कैसी आती, पक्का है या कच्चा है। ऐसे बाबा भी तो हमें नई दुनिया के लिए तैयार कर रहा है, वहां ले जाना है तो वो भी तो देखेगा हम कितने पक्के हैं। लेकिन फिर जब देखने के लिए कोई ना कोई बातें आती है तो हम क्या सोचते, ऐसा क्यों, संशय उठाएंगे, भक्ति छोड़ी इसीलिए तो ये परिस्थितियां नहीं आई, फलाना किया इसलिए तो ये नहीं हुआ, तो जैसे संशय आने लगता। लेकिन बाबा क्या कहते, सोचो कि ये परीक्षाएं हमें परिपक्व बनाएगी, अनुभवी बनाएगी, हम कहां तक पहुंचे हैं उसका मापदंड। वही तो परिस्थितियां हैं, परीक्षाएं हैं। स्टूडेंट जब तक पढ़ता है तब तक उसे परीक्षा देनी ही होती है। जैसे पास होता वो आगे के स्टैंडर्ड में जाता रहता है। कोई कितना भी पढ़े लेकिन परीक्षा न दे, सर्टिफिकेट मिलेगा, नहीं मिलेगा। और बिना सर्टिफिकेट क्या प्रूफ है, क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है। इसलिए हमारी ये भी परीक्षाएं हैं जो हमें परिपक्व बनाती है। और भट्टी में हम ऐसे पक्के होते जो कोई भी बात आए तो भी हम फेल नहीं होंगे, हम हिलेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, हम गिरेंगे नहीं, ऐसी परिपक्वता आती है। कोयले को भी अग्नि में डालते हैं तो क्या होता, उसका रूप रंग गुण बदल जाता, काले से क्या हो जाता, राख कैसी हो जाती, कलर उसका लाइट हो जाता। सोने को अग्नि में डालो तो उसके अंदर जो एलॉय मिक्स होती वो निकल जाती, प्योर सोना हो जाता। कपड़ों के दाग भी भट्टी चढ़ाते हैं मैले कपड़े को धुलाई करने के लिए, तो भी क्या होगा, साफ हो जाते। हर रोज हम अपने घर की सफाई जरूर करते हैं। फिर भी क्या, दीपावली पर विशेष सफाई की जाती है। वो सफाई कैसी होती है? विशेष होती है, सब कुछ कोने कोने से निकाल कर बाहर रख देंगे, उसका उसकी धुलाई कर देंगे साबुन पानी आदि से, अच्छी तरह से कोने कोने से निकालेंगे। तो हर रोज बल सफाई करते, लेकिन उस दीपावली के सफाई में भी फिर भी कचरा निकलता, कुछ ना कुछ कचरा आता ही है। वैसे ये भट्टी हमारी क्या है, विशेष धुलाई कहो विशेष सफाई कहो, ऐसी हमारी भट्टी हमें स्वच्छ प्योर बनाने के लिए है, परिपक्व बनाने के लिए है, और उससे ही हमारी वैल्यू बढ़ेगी, आत्मा की कीमत बढ़ेगी, महत्व बढ़ जाएगा, आत्मा महान बनेगी। एक बार एक कुंभार खेत से मिट्टी लेकर के आया, उसका पिंड बनाया, फिर उसने मटके का आकार दिया। तब तक तो मिट्टी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर जब उसको भट्टी पर रखा तब वो बनाया हुआ गड़ा था वो मना कर रहा था, मुझे नहीं रखो नहीं रखो, फिर भी उसने नहीं सुना। फिर तब करके पक्के होकर बाहर निकला, उस पर रंग लगाता था तो भी उसने मना किया कि मुझे रंग नहीं लगाओ, नहीं सुना। उस पर रंगोली कर रहा था अलग अलग कलर की तो भी मना किया, वो तो अपना काम करता रहता था कुंभार। फिर जब उसको मार्केट में जाकर रखा तो उसकी कीमत सबसे ज्यादा थी। बाबा भी हमें श्रीमत पर आकार दे रहा है, फिर योग अग्नि में तपा रहा है, फिर दिव्य गुणों का वो डिजाइन रंगोली कर रहा है, फिर हमारी वैल्यू बढ़ती है। सब चाहते हैं ना हमारी वैल्यू बढ़े, कोई थोड़ी भी वैल्यू कम करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, देखो मेरे लिए क्या बोलते हैं, किसी को अच्छा लगता है नहीं लगता है। तो हम अभी जब यहां वैल्यू बढ़ाने के लिए आए हैं, कितना हमारा लौकिक कारोबार छोड़कर आए हैं, कितना दूर से खर्चा करके आए हैं, समय निकाल कर आए हैं, फिर ये चार दिन हम क्या करेंगे, बड़ी दृढ़ता पूर्वक तपस्या करेंगे, जो भी सुनाया जाए वो एकाग्रता से सुनेंगे, अपने अपने रूम में जाकर के उसका पठन करेंगे, चिंतन करेंगे, आपस में व्यर्थ बातें नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने में मग्न रहेंगे। ऐसे तो हर रोज वो बातें तो चलती रहती, चार दिन के लिए क्या है, सिर्फ खुद के लिए और खुदा के लिए, खुद को याद करेंगे, खुदा को याद करेंगे, खुद का चिंतन करेंगे, अंतर्मुखी होकर अंदर में चले जाएंगे, स्वयं के अंदर आनंद लेंगे, स्वरूप आनंद, ये आनंद की अनुभूति करें। भक्ति में देखते हैं कि कई ऐसे तपस्वी या भक्त आत्माएं होती है जो अपने ही अंदर मगन रहती है, बल उसको परमात्मा का परिचय भी नहीं होता है, लेकिन स्वरूप चिंतन में वो मग्न रहते, इतना रस आता है उनको, उतना उसमें डूबा हुआ रहता है। एक बार शंकर और पार्वती ने ऊपर से देखा, भक्ति की बात है, कि एक बहुत गरीब भगत था, पार्वती को थोड़ी दया आई, रहम आया, उसने शंकर जी को कहा कि आप देखो अपना भक्त कितना दुखी है या गरीब है, उसको कुछ मदद देनी चाहिए। शंकर जी ने कहा उसको मदद नहीं चाहिए। बोला ऐसे थोड़ी हो सकता है, आप मदद करके तो देखो। दोनों जाते हैं, उसके झोपड़ी के दरवाजे पर खड़े रहते हैं। वो उस समय अपने चूल्हे में रोटी पकाता था, ऐसे उल्टा बैठा हुआ था। उसको पता नहीं कि वो आए हैं, लेकिन थोड़ी कुछ आवाज की, लेकिन फिर भी उसने देखा नहीं कौन आया है। फिर पार्वती जी ने बोला कि देखो भक्ता, आपके दरवाजे पर कौन आया है, तो भी नहीं देखा। फिर कहा कि देखो शंकर जी पधारे हैं, तो भी नहीं देखा। आपको कुछ देने के लिए आए हैं, नो इंटरेस्ट। फिर कहा आपको कुछ चाहिए मेरे से, उस भक्त ने कहा। तो शंकर जी ने कहा मुझे आप जो पकाते हो रोटी, वो रोटी का टुकड़ा चाहिए। तो उसने रोटी में से काट के टुकड़ा ऐसे करके दिया, ऐसे भी नहीं देखा, ले लो। क्यों? एक ही बात थी, वो अपने में ही मगन था। भल बाबा हमें ये नहीं कहते हैं कि आप ऐसे मगन हो कि परमात्मा की परवाह नहीं करो। हमें तो और ही एक सोर्स मिला हुआ है, शक्ति का सोर्स, और अच्छी बात है। उसको तो पता नहीं था, लेकिन इतना वो अपने में मस्त रहता था, उसको बड़ी आनंद आती थी। तो कहने का भाव कि इस भट्टी के दौरान हम भी अपने अंदर में समा जाए, खो जाए, खुद का इतना चिंतन करने लगे। देखो बाबा कितना अच्छा अनुभव कराएगा, कितनी एकाग्रता आ जाएगी, परम शांति परम आनंद की अनुभूति होती रहेगी। और ये अनुभव करने के लिए विशेष समय तो बाबा ने बताया है, दिन भर में तो हम अटेंशन रखेंगे, लेकिन अमृत वेला। कई अनुभव सुनाते, घर में हम नहीं उठते हैं, यहां उठ जाते। वो शिविरार्थी नए नए होते हैं, वहां से हमको कहने में थोड़ी हिचक होती है कि 4 बजे उठकर योग में जाना। सोचेंगे जाएंगे यो डर जाएंगे, या जाएंगे तो सोएंगे, इससे तो हम नहीं कहे बल जब उठो तब जाना, 6:30 की शिविर जरूर करना। तो उसमें थोड़ा लूज स्टिक नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर भी वो आकर के अनुभव सुनाते कि हम तो 4 बजे उठ करके जाते थे, यहां नहीं उठते, लेकिन यहां उठ जाते बाबा के घर में। तो जो आगे सुना है, यहां का वातावरण हमें मदद देता है। और अमृत वेले के समय में बाबा ने तो हमें स्पेशल टाइम दिया हुआ है, सारे खजाने खुले करके रखे हैं, जो चाहिए सो, जितना चाहिए सो लो, कोई लॉक नहीं है, ऐसे कहते हैं। और दूसरी महत्व की बात यह है कि सुबह सुबह हम आत्माओं का, जैसे बाबा से खींचने का जो पावर होता है, एब्जॉर्प्शन पावर, वो बहुत ज्यादा होता है। हम जितना अपने संकल्प से ज्यादा बाबा से ले सकते, उतना खींच करके हम भरपूर हो, संतृप्त हो जाए। तो सारे दिन में कोई भी नेगेटिव बातें अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगी। जैसे आपने देखा होगा स्पॉन्ज होती है, पानी में डालेंगे, पानी को चूस लेगी, फुल हो जाएगी, फिर वो नहीं एक्स्ट्रा पानी ले सकती क्योंकि फुल है। वैसे हम बाबा से सुबह सुबह फुल हो गए तो फिर दिन भर में कोई भी ऐसी बातें होगी वो अंदर नहीं जाएगी, माना उसका चिंतन नहीं चलेगा, उसको हम बुद्धि में धारण करके चले ऐसा नहीं होगा, अपने आप को बाहर ही रहेगी। और निकलेगा तो भी कोई बात आएगी ना, अर्थात प्रेशर आया हमारे ऊपर समझो, तो क्या निकलेगा? जो हमने भरा, क्या भरा? हाँ, बाबा से तो अच्छा ही भरी, शांति, सुख, आनंद, शक्ति, वही तो भरा। तो परिस्थिति का प्रेशर क्या निकालेगा, क्या फैलाएगा? अच्छाई। सबको यही पसंद आएगा ना? बाबा भी, ब्रह्मा बाबा भी हम देखते हैं 2 बजे 2:30 बजे उठकर तपस्या करते थे, और ऐसे निराकारी होकर अशरीरी होकर बैठ जाते थे। देखने वाले भी, पीछे से कोई खिड़की से देखता तो वो भी सोचता बड़ा अच्छा बाबा बैठा है। इतना बूढ़ा होते भी कभी नींद नहीं, कभी झुटका नहीं, एकदम डिटैच। एक बार पांडव भवन में जब साकार ब्रह्मा बाबा थे, एक बहन ने देखा कि बाबा तपस्या कर रहे हैं, फिर बाबा को मिल करके गुड मॉर्निंग करके जाए। अमृत वेला पूरा हुआ और गुड मॉर्निंग किया। बाबा ने पूछा, बच्ची रात को नींद आई? तो वो बहन सोचने लगी कि बाबा क्यों पूछता है नींद आई, शायद मच्छर आदि होंगे, काटे या नहीं, जिस कारण नींद तो नहीं फिटी, इसलिए पूछते होंगे। तो उन्होंने बताया, हाँ बाबा बहुत अच्छी नींद आई। तब बाबा ने कहा, देखो ये बाबा, हाँ बूढ़ा बाबा सो नहीं सकता है, क्यों, कोई बीमारी है क्या, क्यों नहीं सो सकता? आजकल होती है ना निंद्रा की बीमारी। लेकिन बाबा ने कहा, मेरे बच्चे भक्त आदि दूसरे दुखी अशांत आत्मा इतनी है, तो उन्हों को देने के लिए ये बाबा जागता है, सो नहीं सकता। आप कैसे सो सकते हो, आपको कैसे नींद आई? वो बहन तो थोड़ी हो गई, मैंने तो क्या सोचा था और बाबा ने मुझे क्या बोल दिया। तो अमृत वेला हम बड़ा महत्व रख करके ये भट्टी में कुछ जरूर अनुभव करें, बैठेंगे तो भी दृढ़ता से, हाँ लूज नहीं बैठना है, हाँ कटार भी बैठे, मस्तक को ऊंचा रख करके बैठे, आंखें खोल करके बैठे, और बुद्धि रूपी नेत्र से बाबा को देखे और मन वही बातों को सोचे, और कुछ नहीं। बाबा के आगे संकल्प रखे, बाबा आपको मुझे भरपूर करना ही है, हाँ मुझे शक्ति देनी ही है, और मैं शक्तिशाली बनकर बहुत कुछ अच्छा अनुभव करके ही उठूंगी। आसपास कौन क्या कर रहा है नहीं देखना है। फिर दिन भर में भी एक दो से मिलते, बड़ा संगठन है, कईयों को कई दिनों के बाद मिले होंगे, लेकिन जो भी बातें करनी हो, जो भी किसको कुछ कहना हो कह दे, लेकिन 4 दिन हम पूर्ण रूप से मौन रहेंगे, ठीक है? हो सकता है, कौन कौन मौन रह सकते हैं और रखेंगे? इतना अच्छा अनुभव होगा, 5वें दिन आपको बोलने की इच्छा नहीं होगी, आप बोल नहीं सकेंगे। ये अनुभव मुझे यहां करना है। सारी साल, इतने साल बहुत बोला, 4 दिन के लिए इस दुनिया से हम गुम है, इस दुनिया से हम दूर है, बोलना है तो बाबा से बोले, जो भी कुछ कहना है बाबा को कहे, औरों से इस दुनिया के समाचार लेने की इच्छा न रखे, अभी सामने है उससे तो नहीं रखेंगे, फिर है आजकल तो हर एक के पॉकेट में पर्स में मोबाइल, जब सामने वाले से नहीं रखेंगे तो दूर वालों से रखेंगे बात करने की इच्छा। जिसको भी जिसको मैसेज देना है, कुछ कहना है और समाचार भी दे दो कि हम चार दिन के लिए मोबाइल नहीं करेंगे, हम ठीक ठाक है, ओके है, कोई तकलीफ नहीं है, बाबा के घर में बहुत मौज में है, इसलिए आप निश्चिंत रहना, हम फोन स्विच ऑफ करेंगे तो उनको भी पता रहे, घर वालों को भी, नहीं तो सोचेंगे वो चिंता में पड़ जाएंगे क्यों उठाते नहीं, क्यों स्विच ऑफ कर दिया। तो अपने अपने घरों में भी ये बात सुना करके फिर स्विच ऑफ कर दो और आप निश्चिंत होकर के तपस्या में बैठ जाओ। लोग सालों तक तपस्या करते, ऐसे तो हजारों साल वो है नहीं, लेकिन फिर भी घरों को छोड़कर सालों तक करते, हम चार दिन के लिए नहीं छोड़ सकते, हम भी राजऋषि हैं। तो ये हमें ऐसी तपस्या, मौन तपस्या करनी है, तन का मुख का भी मौन, मन का भी मौन और मोबाइल का भी मौन। हाँ, मोबाइल भी नहीं बोले, आजकल थोड़ा मुश्किल हो गया, पहले मोबाइल नहीं था तो चलता था ना, लेकिन आज ये कैसे होगा, हम करके देखें। इसलिए ये तीनों प्रकार का मौन लेकर के आरंभ करें, क्योंकि आवाज में आने से क्या होगा, हमारी जो की हुई अनुभूति है ना वो टूट जाएगी। और बहुत जरूरी है तो बाबा जैसे अव्यक्त रीति से बोलते, अंदर की आवाज से बोलते, या लिख करके बता दो या बहुत धीमी आवाज से बता दो। देखो ये हमें अनुभूति पर पहुंचाएगा। और स्वमान का अभ्यास, स्वमान भी दिया जाता तो उसका भी हम अभ्यास करें, जो क्लासेस है वो भी लिख करके फिर जाकर पढ़ करके उसका कुछ चिंतन करें। ऐसे अनुभव नहीं होगा, हर एक को अनुभव करना है तो एक कुछ बातों का हमें अटेंशन रखना होगा। बाबा ने जो पढ़ाना था वो पढ़ा दिया, ऐसे कहेंगे कोर्स पूरा हो गया, ऐसे तो वो 69 से बाबा ने पढ़ाकर पूरा कर दिया, फिर रिवाइज कोर्स चल रहा है, तब से लेकर क्या चलता, मुरलियां रिवाइज हो रही है, रिवाइज के बाद रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है, और जब तक रियलाइजेशन नहीं करेंगे तब तक जो चौथा कोर्स है, कौन सा है पता है, चौथा कोर्स लिबरेशन कोर्स, नेगेटिव व्यर्थ कमजोर बातों से हम लिबरेट मुक्त हो जाए। ये सारी बातें हमें बांध कर रखती है, उड़ने नहीं देती। तो अभी तो हमें सब कुछ समेट करके परमात्मा की याद में समा कर रहना है, ये समय चल रहा है, फैलाने का नहीं है, विस्तार में जाने का समय नहीं है। अब तक जो विस्तार किया है वो सब कुछ समेट ले, और यहां आए हैं तो समेट करके ही अभी समा जाए। जीवन मुक्ति का अनुभव यहां हमें करना है और अपने अपने स्थानों पर भी, यहां अनुभव करेंगे तो फिर वहां जाकर वो अनुभव में जाना सहज होगा, क्योंकि खुद ने अनुभव किया है, सुना हुआ है उसमें जाना मुश्किल लगेगा, लेकिन खुद ने अनुभव जो किया है उस अनुभव में दोबारा जाना सहज हो जाएगा। इसलिए यहां चार दिन की मेहनत जरूर करें। तो ये चारों कोर्स हम करते चले, उसको पास करना है। और उसके लिए जो कहते हैं हम संगम युग में चल रहे, परिचय में पूछा जाता कि कितने समय से ज्ञान में चलते हो, तो हम क्या कहते, अभी का ग्रुप है 3 से 15 साल से चलने वाली माताओं का ये ग्रुप है, कोई पुराने भी होंगे लेकिन हम इतने साल से चल रहे हैं। भक्ति में ऐसे नहीं कहेंगे कि हम इतने साल से भक्ति कर रहे हैं, चल या कर रहे हैं ऐसे कहेंगे, चल रहे हैं वो नहीं कहेंगे। चलना माना एक एक स्टेप आगे बढ़ना। चलते हैं तो रास्ता भी आएगा, साइट सीन भी आएगी, अवरोध आएंगे, सब कुछ आएगा, लेकिन फिर क्या कहते कि ज्ञान में चलना मासिक अगर नहीं है, ऐसे कहेंगे, क्योंकि बहुत अवरोध आते हैं तो थोड़ी मेहनत पड़ती, तो ऐसे कहते हैं। तो ज्ञान में चलना मासिक अगर नहीं है, विरोध के प्रवाह में जाना है, वो जैसे उतर रहे हैं हम उस साइड में जा रहे हैं, चढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ी सामना बहुत करना पड़ता है, तो ऐसे भी बोलते हैं। एक है चढ़ना कि चल रहे हैं ज्ञान में, दूसरा कहेंगे प्रश्न ये पूछेंगे कि ज्ञान आप में कितने समय से चल रहा है, आपकी बुद्धि में ज्ञान कितने समय से चल रहा है, तो थोड़ा खड़ा रहेंगे और सोचेंगे। तो ज्ञान चलाना, कोई बात आती है तो हम ज्ञान बुद्धि में जो है वो चलाते हैं, वो याद करते हैं कि बाबा ने इसके लिए क्या कहा, इस पेपर में पास होना है तो क्या कहा, तो वो ज्ञान की शक्ति से हम चल रहे हैं, ज्ञान हमारे में चला रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन तीसरी बात है वो सहज लगती कि बाबा हमें चला रहा है, कितनों को ये अनुभव होता कि बाबा हमें चला रहा है, हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, बाबा के वरदानों से जैसे चल रहे हैं, अच्छा तो वो लगता है। लेकिन चलते चलते फिर क्या है, वहां तक पहुंचे, अभी चढ़ाव आएगा, संगम युग चढ़ती कला का युग है, तो हमें ऊपर चढ़ना है, जैसे स्थिति में हम ऊपर जा रहे हैं, एक स्टेप चढ़े, दूसरा चढ़े, तीसरा चढ़े, ऐसे करके स्टेप चढ़ रहे हैं, तो चढ़ती कला में है। अभी चढ़ती कला वाले उसकी निशानी क्या होगी, वो पीछे मुड़कर नहीं देखता, ऊपर चढ़ा पीछे देखा तो क्या होगा, गिर भी सकता है, इसलिए पीछे जो देह दे के संबंध दे के पदार्थ जो छोड़कर उससे निकल कर चढ़ रहे हैं उसकी ओर नहीं देखता, बीती हुई बातों को नहीं सोचता, तभी वो चढ़ती कला में जा सकता है। लेकिन थोड़ा चढ़ने के बाद कई स्थानों पर देखते पहाड़ी पर थोड़ा चढ़ना पड़ता, चाहे स्टेप चढ़ो चाहे बाय रोड बाय कार चढ़ो, थोड़ा ऐसा आधे तक होगा, फिर ज्यादा ऊंचाई आएगी वहां फिर क्या होगा, रोप वे होगा, ऐसे होगा, या हेलीकॉप्टर से उड़कर जा सकते, वे उड़ना है, उड़ती कला। अच्छा क्या लगेगा, चलना चढ़ना उड़ना, सब कहेंगे उड़ना, आजकल एरोप्लेन में कौन उड़ सकते, जिसकी शक्ति है वही तो वो टिकट ले गए, एरोप्लेन की टिकट लेने की शक्ति है। आज कोई भी लोकल बस में बैठना नहीं पसंद करेगा, एक्सप्रेस डायरेक्ट नो हॉल्ट, ऐसे स्पीड में चलने वाले, साधन उसमें हर एक को जल्दी है, तो जल्दी पहुंचाने वाला साधन तो एरोप्लेन है। बाबा भी समय के हिसाब से क्या कहते, समझो पीछे आए हैं, देरी से बाबा का ज्ञान मिला, कई 80 सालों से चल रहे, मेकअप करना है, उनके साथ पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ज्यादा स्पीड उड़ने की है, इसलिए उड़ती कला समय के हिसाब से हमें अपनी मंजिल पर पहुंचना है तो स्पीड ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ेगी, उड़ना पड़ेगा। बोझ वाला उड़ नहीं सकता, उड़ने के लिए उमंग और उत्साह के पंख चाहिए। सदा खुशी में हम रहे, सदा पुरुषार्थ सेवा योग सबका उमंग और उत्साह रहे, और ऐसे उमंग और उत्साह से उड़ेंगे तब ये जो हमारा मंजिल लक्ष्य है, संपन्न बनना है, संपूर्णता को पाना है, बाप समान बनना है, वहां पहुंचेंगे। यहां आए हैं इस स्थिति का अनुभव करके, उस स्थिति में स्थित होने के लिए, जम जाने के लिए, हम संपूर्ण स्वरूप के अनुभव में लंबे समय तक खुद को रख सके, चाहे योग में चाहे प्रैक्टिकल जीवन व्यवहार में। कोई अपनी कमियों को ढूंढे तो भी न मिले, ऐसे हम गुण संपन्न शक्ति संपन्न बन जाएं। आज क्या होता है, गुण ढूंढना पड़ता है, लेकिन कहां पहुंचना है कि अवगुण ढूंढना पड़े, कि देखे इसमें क्या अवगुण है। न सिर्फ खुद उड़े, न सिर्फ खुद चले, देखना है हम तो चल रहे हैं, कितनों को साथ में चलाया, हम तो उड़ रहे हैं, कितनों को हमारे साथ उड़ाया, वो भी लाइट होकर उड़ते रहे, हल्के होकर वो भी उड़े, वो भी अनुभव करे कि आपके साथ संग रहने से, देखने से, आपको सुनने से वो हल्के हो गए। कई बार कईयों को होता है खुद को कुछ टेंशन आ जाता है, फिर याद करते कि इनके पास जाए तो हम हल्के हो जाएंगे, और रियल में हो जाते हैं। कौन करता है, बाबा का ज्ञान, बाबा की शक्ति, क्योंकि वो बाबा ने हमें दी है जो हम औरों को देते हैं। तो बाबा समान रहम दिल जब तक नहीं बनेंगे तब तक औरों को दे नहीं सकेंगे। कई बार संपत्ति बहुत होती है, बाबा ने बीच में कहा था ना, संपत्ति हो स्थूल में लेकिन सिंपति न हो, तो क्या काम के। तो और दुखी अशांत आत्माओं के लिए हमारे अंदर सहानुभूति सिंपति वो भी होनी चाहिए, तब हम उन्हों की सेवा कर सकेंगे, सेवा बाना उन्हों को मदद दे सकेंगे। आने वाले समय में और भी आत्माएं कमजोर होगी, अपने आप कुछ नहीं कहेगी, क्या सोचेगी, आप कर दो, हमारे में शक्ति नहीं है, हमारे पास समय नहीं है 7 दिन का कोर्स लेने का भी, जो भी करना है आप कर दो, हमें शक्ति आप दे दो, हमारा काम आप कर दो, ऐसे कहेंगे। इसलिए हमें इतना संपन्न होना होगा, भरपूर होना होगा। इस भट्टी में आए हैं तो हम क्या बन करके जाएं, भरपूर हो करके जाएं। सागर के कंठे पर आते हैं तो कोई लोटा भर के जाते, कोई गड़ा भर के जाते, तो कोई हम सागर पूरा ही पी लेते हैं, ऐसे कहते हम कितना भर कर जाएंगे, कितना बड़ा बर्तन लेकर आए हो, कितना बड़ा साधन लेकर आए हो भरने के लिए, नोटबुक डायरी लाए हो या और भी कुछ है। हाँ, बुद्धि इतनी बड़ी डायरी, इतना बड़ा कंप्यूटर है जिसमें सब कुछ डाल दो और समय पर, जैसे समय पर क्लिक करो और वो बात आपको मिल जाए, वो बात आपकी बुद्धि में ऊपर के लेयर पर आ जाए, इमर्ज हो जाए। इसलिए समय पर ज्ञान हमें याद आए तभी तो विजयी होगी, तभी तो हम संपन्न होंगे। इसलिए दिन भर में कोई विकर्म न हो, दिन भर में हमें कभी भी किसी भी बात से फेल न हो, छोटे मोटे सभी पेपर्स में हमें पास जरूर होना है। पास होने के लिए तो बाबा ने कहा था तीन शब्द, तीन अर्थ याद रखो, कौन से? फेल नहीं होना है, पास होना है, बाबा के पास रहना है और पास ऑन। बीती सो बीती, बीत गया, पास हो गया और हुआ ही पड़ा है क्या? विजय, सफलता। निश्चिंत तो हो जाएंगे। उड़ती कला वालों की निशानी क्या, वो लाइट किस लिए है? कोई चिंता नहीं है, क्या सोच है अंदर में? हुआ ही पड़ा है, निश्चिंत रहेंगे। बाबा भी कहते मुझे चिंता दे दो, मैं बैठा हूं ना, लेकिन देने में सोचते हैं पता नहीं बाबा बैठा है तो क्या करेगा, मेरा काम ये करेगा या नहीं करेगा। पूर्ण विश्वास के साथ हम बाबा को वो बात दे दे, सुना दे और खुद उससे मुक्त हो जाए। यहां सब आए हो तो कुछ ऐसी बातें लेकर भी आए होंगे जो आपको थोड़ा चिंता में डालती होगी, क्या होगा, ये छोड़कर आए हैं, फलाना क्या करेगा, ये होगा या नहीं होगा। लेकिन ये सब बातों को सौंप दो, किसको? अभी बाबा को सौंप दे। बाबा ये तुझे संभालना है, मैं तो यहां आई हूं बच्ची करने, इसलिए मुझे यहां से भरपूर होना है और वो बात से मुझे निश्चिंत रहना है। आए होंगे ना, कोई कोई लेकर के आए हैं, वो बातों को अभी लेकर आए हैं तो बाबा को दे देना और खुद निश्चिंत हो जाना, तभी निराकारी स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। अपने अपने स्थानों पर तो इतने लंबे समय तक एक स्थिति में बैठ करके तपस्या करे कम होगा। यहां आए हैं बाबा हमेशा कहे लंबे समय तक अभ्यास करो, लंबे समय तक योग में बैठकर, जैसे अशरीरी होकर बैठे, शरीर से डिटैच होकर के परम धाम में जाकर बैठ गए। जब तक ऑर्डर न मिले उतरना नहीं है, तो यहां वो कर सकेंगे। अपने स्थानों पर तो क्या होगा, अचानक कोई आ जाएगा, कुछ काम आएगा, फोन आएगा, या यहां न भोजन पकाना है, क्या पकाए, बाजार से क्या चीज लाए, ये कुछ सोचना नहीं है आपके लिए। सब सेवाधारी तैयार है, किस लिए? कि आप कुछ लेकर के जाए, अनुभव करके जाए, भरपूर हो करके जाए। इसलिए सब कुछ तैयार मिलता है कि हम तैयार हो जाए। बाबा सब तैयार क्यों देता है? वो चाहता है कि इतने हजार माताएं आएगी और वो तैयार होकर जाए, तैयार होकर अपने अपने स्थानों पर जाएगी, भारत के अलग अलग कोने में जहां भी जाएगी सब क्या अनुभव करे, बदल कर आए। ये तो फरिश्ता बन करके आए, ये तो संपन्न होकर के आए, अनुभवी होकर के आए, रूहानियत दिखाई दे, दिव्यता दिखाई दे, बोलने से नहीं, आपको देख करके, आपके व्यवहार बोल चाल सब से, और वो फिर सदा के लिए आपके साथ रहे, वो आपकी प्रॉपर्टी बन जाए, समझा? दो चार दिन के लिए नहीं, लेकिन सदा के लिए ये रहेगी। फिर इससे ऊपर की चीजें आपके जीवन में आएगी। इसलिए हम सिर्फ जीवन व्यतीत नहीं करते, ब्राह्मण जीवन सर्वोत्तम जीवन है। बाबा हमारा यह जीवन बनाते हैं। कैसा बनाते? दिव्य जीवन बनाते, रूहानियत से भरपूर जीवन बनाते, सबके प्रति यही भावना रहे, ये सब हमारे हैं और सब हमारे हैं जो अच्छे हैं। इतना स्लोगन पक्का कर लेना, जिसको भी देखो, जिसके भी संग में जाओ, आपके संकल्प क्या हो, आपकी भावना क्या रहेगी, बल कैसा भी हो, सब हमारे हैं, सब अच्छे हैं, निकलेगा अच्छे हैं। ये तो ऐसा है वैसा है, वो नहीं तो हमारे वाइब्रेशन उसकी बैटरी को डिस्चार्ज कर देगा। समझो 50% बैटरी है उसकी, हमने कुछ उसकी नेगेटिव बात को लेकर के सोचा, हाँ वो तो ऐसा ही है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उसका 40 हो जाएगा। लेकिन हम सोचेंगे भले इतना है, लेकिन और वो अच्छा बन जाएगा। हमारी शुभ भावना क्या करेगी? 50 से 60 तक उसको ले जाएगी। ये समझ बुद्धि में रखकर हम क्या करें? वो तो समझो नहीं समझ रहा है, उसमें वो शक्ति नहीं है, तो हम इतना तो कर सकते, पॉजिटिव शुभ सोच उसके लिए चलाए। लेकिन वो चलाने में भी शक्ति चाहिए, हमारी शक्ति होगी तो चलेगा, कमजोर होंगे तो नेगेटिव चलेगा। इसलिए पक्का करेंगे कि हमें अच्छा ही चलाना है, जो सबकी बैटरी फुल होती जाए, हमारी तो हो लेकिन दूसरों की भी होती जाए, ऐसा संकल्प लेकर के सभी बच्ची शुरू करेंगे।
कर्मों के बल पर ही सतयुग में अब تمہیں آنا ہے
سدیوگ میں اب تمہیں آنا ہے.